हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मन से समस्त भौतिक आसक्ति, जो कि हमारे हृदय की सबसे बड़ी मलिनता है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने नहीं देती, और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु शरत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। परम सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अमृत को पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 8 में वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म सुनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। कि जिसको भगवान की कथा के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है, जिसको भगवान के विषय में, भगवान के शब्दों को सुनने के लिए जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है, तो समझ लो कि उसके संपूर्ण धर्म जो है वो एकदम परफेक्टली पालन हो रहे हैं। यानी कि ये जो भगवान की कथा के अंदर आसक्त के लिए जो रुचि उत्पन्न हुई है ना, वो कोई साधारण कार्य नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं संसार में सब कुछ, सबको ये ना संसारिक चीजों को, संसारिक टॉपिक्स को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक सेन कथा से, अगर आप अपने स्वधर्म को, यानी जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय धर्म को, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण धर्म को, और जो है ना वैश्य शूद्र है वो अपने अपने धर्म को, और ब्रह्मचर्य अपने धर्म को, गृहस्थ अपने धर्म को, वानप्रस्थ अपने, और सन्यासी अपने अपने धर्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से यदि पालन करता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? उसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि उसको भगवान की कथा में रति उत्पन्न हो जाए, उसको भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये सारे जो धर्म हमारे है ना, अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी, इन सबको करने का रिजल्ट फल क्या है कि हमें भगवान की कथा में रुचि, बस श्रवण करने में रुचि हो जाती। और शास्त्र क्या कह रहा है, धर्म सुनिश्चिता पुंसाम, कोई मनुष्य यदि अपने धर्म को सुनिश्चित बहुत ही सुंदर तरीके से करता है, लेकिन विश्वक सेन कथा सु, यहाँ विश्वक सेन यानी भगवान श्री कृष्ण की कथा में नोत्पादयेत यदि रतिम, नोत्पादयेत मतलब यदि उत्पाद नहीं कर पाता है, पैदा नहीं कर पाता है रति को, भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं होती है, भले वो अपना सारे, कोई लड़कियां, कोई लेडीज बोलती है भाई मैं इतने सारे धर्म, अपने घर में कार्य करना होता है और ना गृहस्थ धर्म का पालन करता है, किस करना होता है, किसी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है, और ये सारे करने के बाद उसका मीटर क्या है कि कथा में रति उत्पन्न हो। लेकिन अगर कथा में रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो भले आप कितना ही सुंदरता से अपने सारे धर्मों को पालन करते हो, शास्त्र कहता है श्रम एव ही केवलम, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, यदि भगवान की कथा में रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो फिजूल का धर्म पालन है, उसका कोई फायदा नहीं। श्रम एव ही केवलम, शास्त्र तो कहता है यथा तुषा वघातिना, यानी तुषा किसको बोलते हैं, जैसे चावल होते हैं ना, चावल के अंदर येलो कलर के चावल होते हैं, जो नहीं सारियां जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, कूटने से उसमें से चावल निकालते हैं। और अगर किसी को बहुत तेज भूख लगी हो, मतलब अब क्या किया, सारे चावलों को निकाल दिया उसमें से, अब क्या बचा, जो भूसा बचा ना, उसको तुषा बोलते हैं। तो शास्त्र कहता है यथा तुषा वगातिना, जिस तरह से खाली भूसे में से अगर कोई कोशिश कर रहा है कि चावल निकले चावल निकले, भले ट्रक भर के आपके पास वो भूसा पड़ा हो, लेकिन उसके अंदर एक दाना भी चावल का नहीं है, सारे निकाल दिए गए हो, तो फिर आप अगर सुबह से लेकर रात तक उसको कूटते रहोगे कूटते रहोगे, तो क्या होगा, कुछ भी फायदा तो नहीं होगा ना, आपको धान तो मिलने वाला नहीं, आपको चावल तो मिलने वाले नहीं। उसी तरह से यदि आप अपने धर्म का सुनिश्चित तरीके से पालन कर रहे हो और भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो समझो ऐसा ही है श्रम एव ही केवलम। जैसे खेत में सख्त मेहनत करे किसान, कोई हल जोते, बीज लगाए, और रिजल्ट क्या निकलना है, रिजल्ट तो यह निकलना है कि वृक्ष में से फल निकले ना, लेकिन वृक्ष में से अगर फल नहीं निकलता, तो उसने मेहनत तो पर्याप्त की लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, फल नहीं निकला। उसी तरह से यदि हम अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर सबका सब परिश्रम व्यर्थ है। तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि आपके उत्पन्न हो गई, अर्थात रिजल्ट मिल रहा है। जितने भी आज तक धर्मों का अनुष्ठान किया है, उसका रिजल्ट क्या है कि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 28। कृपया मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। फिर से दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। फिर से दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। एक बार लास्ट। दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। शब्दों का अर्थ देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा दृष्ट्वैमं बोला ना, दृष्टि किसका बोलते हैं, आंखों को। तो दृष्ट मतलब देखा, एमं मतलब इन सारे, किन सारों को। देखो भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने बोला था कि सेंटर में रथ खड़ा कर दो, तो सेंटर में कहाँ खड़ा किया भगवान ने, जो हमें 25 में पढ़ा था, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् अवाप्य पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म तथा द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा पार्थ जरा देखो। जब देखा तो इन सबको देखा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दृष्ट्वै इमम यानी इन सारे स्वजनम। अब वो सारे क्या थे, स्वजन थे। अब अर्जुन को प्रॉब्लम क्या थी कि जिनसे भी जिधर भी देख रहा है, अपनी तरफ भी देख रहा है, अपनी सेना की तरफ भी देख रहा है तो भी, और दूसरी सेना की तरफ देख रहा है तो भी, स्वजनम। ये स्वजन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने प्रिय के साथ युद्ध करना बहुत कठिन है। हम अपने प्यारों के साथ युद्ध करना, मतलब जिस जो दुश्मन होते हैं उनके साथ लड़ाई करना आसान है, लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है, उनसे साथ युद्ध, जिसमें युद्ध का भी क्या रिजल्ट, चलो वाक युद्ध हो, कभी छोटी मोटी लड़ाई होती वो अलग बात है, लेकिन यह युद्ध क्या है कि सामने वाले को जान से मारना है। तो ये जब उसने देखा दृष्ट्वैवम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम, युयुत्सम का मतलब होता है युद्ध की इच्छा से जो आए हैं, सम उपस्थितम यानी उपस्थित होते हैं, सीदंती। अब अर्जुन अपनी कंडीशन बता रहा है, सीदंती माना कांप रहा है, बोलते हैं सी सर्दी होती है ना, उन लोगों को कांपते हैं। मम माना मेरे, गात्राणी माना शरीर के अंग। अब यहाँ पर शरीर के अंग बताया गात्राणी, ये अर्जुन किसको कह रहा है, कृष्ण को कह रहा है। कृष्ण कौन है, ऋषिकेश है, और ऋषिकेश को अपने शरीर की कंडीशन बताकर अर्जुन क्या चाहते हैं कि क्योंकि मेरी शरीर की कंडीशन अभी नॉर्मल नहीं है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और क्या हो रहा है, मुखम यानी मुंह च यानी भी परिशुष्यति सूख रहा है। अब अपने शरीर के अंगों और अपने मुख के सूखने की सूचना देते हुए अर्जुन ये चाहते हैं, क्योंकि आप ऋषिकेश हो, आप इंद्रियों के स्वामी हो, कृपया मेरी इस कंडीशन को एकदम ठीक कर दो, क्योंकि आप कर सकते हो, आप समर्थ हो, आप ऋषिकेश हो, आप कृपया मेरी इस कंडीशन को ठीक करो ताकि मैं युद्ध करने के काबिल हो सकूं। अब आज हमने श्लोक नंबर 28 पढ़ा ना, तो 28 से लेकर 38 तक जो 10 श्लोक होंगे ना, दिस 10 श्लोक्स आर डिपेंड्स ऑन अर्जुन विषाद योग। इस चैप्टर का नाम याद है ना आपको, अर्जुन विषाद योग। विषाद किसको बोलते हैं? विषाद का मतलब होता है दुख, और योग का मतलब होता है मिलना। वास्तव में आपको एक बात बताऊं, जितने भी ये भगवद गीता के जितने चैप्टर है ना, 18 चैप्टर, उनका नाम ऐसा ही है। जैसे हमारा पहला नाम, पहले चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योगो नाम, दूसरा सांख्य योगो नाम, तीसरा कर्म योगो नाम, चौथा कर्म संन्यास योगो नाम। मतलब जिसमें भी है योग है, जो भी शब्द है चैप्टर का नाम है उसके साथ योग मिला हुआ। योग का मतलब होता है जोड़ना। जुड़ना तो किससे जुड़ना? योग माना भगवान के साथ जुड़ना। तो ये पहले चैप्टर में अर्जुन भगवान के साथ जुड़ रहे हैं विषाद के कारण। विषाद कहते हैं दुख के कारण। तो आज से अर्जुन के दुख के श्लोक स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आप दुखी नहीं होते, देखो पहला चैप्टर दिया विषाद योग, यानी कि दुखी जो है ना वही भगवान की शरण में, भगवान के साथ अपना योग जो है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। अब दुख का मतलब बहुत होता है। कुछ लोग को समझ में क्या आता है कि दुख में हमारी संसारी कोई भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती है, वो दुख होता है। लेकिन वास्तविक दुख भक्तों ये नहीं होता है। वास्तविक दुख ये है कि आपको आपके घर से निकाल दिया गया है, आप भगवान के अंश हो, आपका रियल जो स्थान है भगवान के घर में रहना है, भगवान के साथ रहना आपका रियल। जैसे कोई राजा हो, उसका बेटा अगर किसी वजह से मतलब कोई अपराध करे, उसे घर से निकाल दिया जाए, तो भले उसके पास कितना ही धन दौलत सुकून की लाइफ बाहर साइड पर भी हो, लेकिन अगर पिता से दूर होना उसका सबसे बड़ा दुख है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, अपने पिता से, अपने परिवार से दूर हूँ। जो मैं भले कितना ही सुखी अलग रहकर लाइफ गुजारूं, लेकिन फिर भी मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है कि मैं कृष्ण से दूर हूँ। तो भले यहाँ संसार में, वैसे तो भगवान ने बता दी संसार की डेफिनेशन कि दुखालयम अशाश्वतम, के संसार में आपको दुख ही दुख मिलने वाला, सुख रखा नहीं मैंने। लेकिन अगर कोई यह जान नहीं पा रहा है कि यहाँ पर मुझे दुख मिल रहा है, उसकी लाइफ एकदम सेटिस्फाई है, तो भी ये जानकर उसे दुखी होना चाहिए कि मैं अपने घर से निकाल दिया गया हूँ, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मुझे मेरे पिता ने, मुझे मेरे भगवान ने अपने घर से निकाल दिया और संसार में भेज दिया। अब मैं कैसे ऐसा कोई कार्य करूं कि मुझे फिर से मेरे भगवान अपनी शरण में स्वीकार करें। तो यह दुख हमें हर वक्त महसूस होना चाहिए कि हम भगवान से दूर, भगवान के लोक से दूर, यहाँ भौतिक जगत में क्यों पड़े हुए हैं। तो ये पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, और विषाद के कारण अर्जुन भगवान से अपना योग बना रहा है। और श्लोक नंबर 28 से लेकर श्लोक नंबर 38 तक ये 10 श्लोक हमें विषाद के कारण मिलेंगे, और यही विषाद जो है, यही दुख जो है, वो अर्जुन को भगवान को प्राप्त करने का कारण बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं, हमें ये जरूर बहुत ही अच्छे तरीके से समझने चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता इन्हीं श्लोकों से स्टार्ट होगी। यदि अर्जुन ने विषाद को प्रकट न किया होता तो भगवान ने भगवद गीता को प्रकट न किया होता। तो बहुत ही अर्जुन का हमारे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी करुणा है। वास्तव में भक्तों एक बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं और मोह है अंधकार। अर्जुन यहाँ पर मोह में गिर रहा है और भगवान है सूर्य। सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, तो अर्जुन का मोह भगवान के सामने कैसे टिका? सूर्य जहाँ पर है वहां पर अंधकार का प्रश्न ही नहीं, तो अर्जुन को यह मोह उत्पन्न कैसे हुआ? वास्तव में भक्तों अर्जुन का मोह तो भगवान के समक्ष आते ही समाप्त हो गया, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि वह मोह बरकरार रहे, ताकि उस मोह को सामने रख के ही, उस मोह की वजह से ही भगवद गीता प्रकट हो सके, जो कि हमारे कल्याण के लिए है। तो हम अनुवाद देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अपनी कंडीशन भगवान को बता रहे हैं कि ये हो रहा है। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सेंटर में खड़ा कर दिया था ना, तो भगवान ने कहा था कि श्लोक नंबर 25 में भगवान ने कहा, उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान गुरु नीति। देख लो, जी भर के देख लो जो जिसको देखना है। तो यहाँ पर बोला कि मैंने देख तो लिया, लेकिन अभी देख कर मेरी कंडीशन खराब हो गई है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योजनाओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त होता है ना, जो भक्त जिसको बोलते हैं डिवोटी, उसके अंदर वो सारे सद्गुण स्वतः आ जाते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर सद्गुणों की एक लिस्ट बना के डाल दो कि मेरे अंदर है ना श्रद्धा होनी चाहिए, मेरे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, मेरे अंदर है ना विषाद होना चाहिए, मेरे अंदर दूसरों के साथ बोलने का तरीका होना चाहिए, मेरे अंदर मैनर्स होने चाहिए। ये एक एक करके आप अपने अंदर डाल नहीं सकते। लेकिन यदि आप सिर्फ केवल भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हो, यदि कोई भक्त, देखो श्री प्रभुपाद ने कितना सुंदर बोला, यथार्थ भक्त। यथार्थ का मतलब होता है सही मायने में जो भक्त होता है, रियलिटी में जो डिवोटी होता है, और जो यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य होता है, जो वास्तव में भक्त है। और मैं भक्त का आपको बताऊं भक्त का क्या मतलब होता है। भक्त का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, यथार्थ भक्ति जो यहाँ पर शब्द श्रील प्रभुपाद जी ने उच्चारण किया, उसका मतलब क्या है कि आपके हृदय में अन्य अभिलाषिता शून्यम और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और ज्ञान कर्मादि अनावर्तम कोई भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, कर्म योग भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली क्या अनुकूल न कृष्णानु, मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, शीलनम भक्तिरुत्तम, यही भक्ति कहलाती है कि मैं कृष्ण को कैसे खुश करूं। तो यदि कोई मनुष्य भक्ति करता है, यथार्थ रूप से भक्त बन जाता है, और उसके मन में केवल एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं कैसे कृष्ण को खुश करूं, तो उसके अंदर बाकी सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। उनके लिए उसे अलग अलग प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और कौन से गुण आ जाते हैं उसके अंदर, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पहली लाइन में बताया ना, देखो सारे सद्गुण रहते हैं। कौन से सारे, जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी अच्छे लोग के अंदर जो जो बातें पाई जाती हैं, जो जो क्वालिटीज पाई जाती हैं, और देवताओं के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, वो यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य के अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं। जबकि अभक्त, अभक्त माना जो भगवान का भक्त नहीं है, वो भले कितना ही सोफेस्टिकेटेड लाइफ क्यों ना गुजारता हो, कितना ही शिक्षा क्यों ना ग्रहण कर लियो, लेकिन अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योजनाओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, भले वो सांसारिक योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से अपनी कर सकता हो, भले वो कितना ही है ना बड़ा साइंसदान क्यों ना बन जाए, इंजीनियर क्यों ना बन जाए, डॉक्टर क्यों ना बन जाए, उन्नति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं, अभक्त है, तो ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है, तो उनको ये सारे सद्गुण प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि सबसे पहला गुण क्या है, भगवान की भक्ति, उसके पीछे पीछे सारे गुण आ जाते हैं। क्योंकि भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य की माता है। जहाँ भक्ति होती है, तो क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के छोटे छोटे पुत्र हैं, तो वो अपनी माँ का आंचल पकड़ के उसके पीछे पीछे आ जाते हैं जहाँ पर भक्ति होती है। तो यहाँ पर कहा भक्ति के बगैर कुछ भी हमारे पास सद्गुण नहीं होते हैं, अतः स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। यानी कि जब जब देखा उसने सारे लोग को तो उसको दुख होने लगा जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और वह जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख रहा था। अब देखो यहाँ पर शबोपा जी बता रहे हैं कि अपनी साइड के लोगों के साथ तो वैसे ही उसको बहुत सहानुभूति थी, बहुत उनसे स्नेह था, क्योंकि मेरी वजह से कोई अपनी जान को दांव पे लगा रहा है तो उनके लिए तो दुख होना ही था। लेकिन जब विपक्षी को यानी जो सामने वाले दल में अपोजिट साइड पे जो खड़े थे उनके सैनिकों को देखा तो उनके भी बहुत सारे जो जितने भी थे सारे हमारे अपने रिलेटिव हैं, तो उनको देखकर उसके हृदय में करुणा बहुत ज्यादा जागृत हो गई और विषाद उत्पन्न हो गया। और जिसकी वजह से इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, उसका मुख सूख रहा। जैसे उसने खुद बताया कि सीदंती मम गात्राणी, मेरे सारे अंगों में कंपन हो रहा है, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ, सबको देखकर आश्चर्य हो रहा था कि ये अधर्म के साथ युद्ध कर क्यों रहे हैं। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। यानी श्रभुपा जी बोल रहे हैं कि अब देखो आपके सामने कोई अपना खड़ा हो और आपको उसको मारना हो, जान से मारना हो, तो क्या कंडीशन होगी उसकी। श्रभुपा जी बोले भले यहाँ पर वेद व्यास जी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उसको रोना आ रहा था, लेकिन वास्तव में उसको आ रहा होगा। देखो लिखा हुआ है कि किंतु बलि उसका ना यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उसके अंग नहीं कांप रहे थे, उसका मुंह खाली नहीं सूख रहा था अपितु वह दयावश रुदन कर रहा था। उसको इतना दुख हो रहा था कि अभी इतने सारे मेरे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं और मेरा कर्तव्य उनको मारना है, मैं उनको जान से मार डालूं, अपने गुरुओं को, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को मरता हुआ देखूं मैं, तो उसको वो दुख हो रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि भक्त के अंदर सबसे पहला गुण क्या है, हृदय की कोमलता, हृदय की विनम्रता। जहां पर विनम्रता नहीं वहां पर भक्ति लता बीज कभी नहीं उपज पाता। तो ये विनम्रता पहला गुण है जो भगवान को प्रसन्न करता है, जो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि चैतन्य शिक्षा अष्टकम का श्लोक नंबर 3, तृणादपि सुनी सेना तरुरपि सहश्रुना अमानी न मान देना कीर्तनीह सदा हरि। ये चार क्वालिटीज हैं, अपने आप को राह में गिरे हुए तिनके से भी तुच्छ समझना और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, अपने लिए मान की कोई उपेक्षा न करना और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करना। इस श्लोक को आप कंठी में तावीज बनाकर पहन लो, यानी कि हर क्षण यदि यह श्लोक आपको याद रहे, यह श्लोक को आप यदि फॉलो करते हो कीर्तनी हर सदा हरि, तभी आप भगवान के कीर्तन को कंटिन्यूस कर सकते हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। श्रीप्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन कोई कायर नहीं था, उसको दुर्बलता के कारण ये सब लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे थे अपितु हृदय की कोमलता के कारण। उसके हृदय में करुणा थी, वो भगवान का भक्त था और भक्त के अंदर करुणा मुख्य गुण होता है जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। अतः कहा गया है श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 18 टेक्स्ट नंबर 12 में लिखा है यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहु। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, सुरा कहते हैं देवताओं को, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, सारे गुण जो देवताओं के अंदर होते हैं, किसको, जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है उसके अंदर देवताओं के सारे गुण पाए जाते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, लेकिन जो हराव भक्तस्य यानी जो भगवान की भक्त नहीं है, अभक्तस्य लिखा हुआ है, कुतो महत् गुणा, उसके पास भौतिक योजनाएं बहुत होती हैं, मनोरथे नास्ति धावतो बहु, मनोरथ पूर्ण करने के लिए बहुत सारी उसके पास योजनाएं होती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ इस संसार में आपको थोड़े दिनों के लिए अशाश्वत है, थोड़े दिनों के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगी, लेकिन शास्त्र कहता है कि उसका कोई मूल्य नहीं। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, क्योंकि उसको मानसिक धरातल पर ही है, वो सिर्फ भौतिक विचारों में मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकर्षित होता है। अगर भक्त अभक्त है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो भले वो कितना ही एजुकेशन ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, तो वो जरूर माया के द्वारा आकर्षित होता है और माया उसकी चुंगल अपने चुंगल में उसको फांस देती है और वो जीवन के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है अभक्तों का कि वो भले कितना ही सीख लें, कितना ही ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन जब तक आपके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, तब तक सद्गुण का देवताओं के महत्व, यहाँ पर भी भगवान ने बताया कि सद्गुण यानी देवताओं के अंदर जो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने पहली लाइन में लिखा है ना, जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं वो सारे भक्तों के अंदर स्वतः पाए जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।